19 नवंबर गुरुवार दिन भर मैं हूं संदीप सोनी। पेरिस हमलों का संदिग्ध मास्टरमाइंड अब्देल हमीद अबाउद मारा गया। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा देश पर जैविक रासायनिक हमले का खतरा।
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires, les façons de frapper, de tuer évolue sans cesse. L'imagine.
भारत में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया। विश्व शौचालय दिवस के बहाने आज मिलिए प्रियंका भारती से।
हमारे यहाँ तो लोग ताने दे रहे थे कि देखो अभी तो एक महीना हुआ है शादी हुई अब भाग आई ससुराल छोड़कर शौचालय के लिए कितनी खराब है।
सुनिए कश्मीरी पंडित क्यों खुश नहीं है मोदी सरकार की पुनर्वास योजना से। होंगी आपकी चिट्ठियां और खेल की खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। फ्रांस के अधिकारियों के मुताबिक अब्देल हमीद अबाउद नाम के जिस शख्स को वे पेरिस पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड मान रहे थे वह कल की गई पुलिस कार्रवाई में मारा गया है। फ्रांस के सरकारी वकील ने कहा कि औपचारिक तौर पर अबाउद की शिनाख्त उसकी उंगलियों के निशान से की गई। इससे पहले फ्रांस की संसद ने देश में आपातकाल को 3 और महीनों तक बढ़ाने के पक्ष में वोट दिया। पेरिस में शुक्रवार को हुए चरमपंथी हमले के बाद आपातकाल की घोषणा की गई थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि पेरिस हमलों से पश्चिमी देशों को यह समझ आ गया है कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ना राष्ट्रपति असद को हटाने से कहीं ज्यादा अहम है। विदेश मंत्री लावरोव ने जोर देकर कहा कि सीरिया की समस्या को राष्ट्रपति असद की सहभागिता के बगैर शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं किया जा सकता। इससे पहले मनीला में एपेक्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि सीरियाई गृह युद्ध तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति असद सत्ता में। अमरीकी विदेश मंत्रालय और एफबीआई ने चेतावनी दी है कि सेंट पीटर्स बसिलिका और इटली के अन्य महत्वपूर्ण स्थल चरमपंथियों के निशाने पर हो सकते हैं। इसके बाद वेटिकन में और उसके आसपास सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। सेंट पीटर्स स्क्वायर पर पर्यटकों ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया की। ऐसे ही एक पर्यटक कैंट मैक्रेट ने कहा ईमानदारी से मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे इस पर हैरानी हुई है। पवित्र स्थल और बड़ी जगहें जहां ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं वो चरमपंथियों का निशाना होंगे ही। अगर सवाल सुरक्षा का है तो मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और इटली में भी हमारे देश की तरह चीजें अलग नहीं हैं। ये थे कैंट मैक्रेट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस ने एथलेटिक्स में धोखाधड़ी के आरोपों के मद्देनज़र वादा किया है कि वह अपनी डोपिंग निरोधी संस्था में सुधार करेगा, लेकिन इस संस्था को पूरी तरह बंद करने से इनकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग निरोधी संस्था वाडा ने इससे पहले रूस को अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताओं से बैन कर दिया था। वाडा ने कहा है कि इसराइल, अर्जेंटीना, बोलीविया और यूक्रेन की डोपिंग निरोधी संस्थाएँ भी नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। 14 देशों के लेखक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 3 दिवसीय साहित्य समारोह के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये समारोह उस वक्त किया जा रहा है जबकि बांग्लादेश में 4 धर्मनिरपेक्ष लेखकों और एक प्रकाशक की हत्या की जा चुकी है और लेखकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समारोह के आयोजकों को उम्मीद है कि ये समारोह बांग्लादेशी नागरिकों को लेखन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बेल्जियम में अधिकारियों ने आज भी कई जगहों पर छापे मारे हैं। इस कार्रवाई में उन लोगों को निशाना बनाया गया है जिन पर पेरिस में शुक्रवार को हुए हमले में शामिल होने का शक है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करें संदीप सोनी का। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवाएंगे मोदी सरकार की पुनर्वास योजना पर विस्थापित कश्मीरी पंडितों की आवाज़, उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में सूखे की स्थिति पर नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट और आज विश्व शौचालय दिवस के मौके पर प्रियंका भारती से खास बातचीत, जिन्होंने ससुराल में शौचालय नहीं होने की वजह से अपने पिया का घर छोड़ दिया था। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। फ्रांस के अधिकारियों का कहना है कि पेरिस हमलों का संदिग्ध मास्टरमाइंड अब्देल हमीद अबाउद मारा गया है और उसकी लाश की पहचान कर ली गई है। वहीं फ्रांस के प्रधानमंत्री ने देश पर जैविक रासायनिक हमले की आशंका जताई है और देश में जारी आपात स्थिति को 3 महीने बढ़ाने के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
पेरिस हमलों का संदिग्ध मास्टरमाइंड 27 वर्षीय अब्देल हमीद अबाउद मारा गया है। पेरिस में प्रोसिक्यूशन अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को उत्तरी पेरिस में हुई पुलिस कार्रवाई में अबाउद मारा गया और उसकी लाश की पहचान कर ली गई है। वहीं फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुएल वॉल्ज ने सांसदों के साथ बहस में भाग लेते हुए चेतावनी दी है कि चरमपंथी संगठन फ्रांस पर रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला कर सकते हैं। ये बहस लगभग एक हफ्ते पहले पेरिस में हुए आत्मघाती हमलों और धमाकों के संदर्भ में हो रही है। फ्रांस के सांसदों ने देश में लगे आपातकाल को 3 महीनों तक बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया है। पेरिस में हुए हमलों में 129 लोग मारे गए थे और लगभग 400 घायल हुए थे, फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुएल वॉल्ज ने कहा।
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper.
हर समय हमले करने और जान से मारने के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। जो लोग ये आदेश दे रहे हैं उनकी विकृत सोच की कोई सीमा नहीं है। सर कलम करना, आत्मघाती बमबारी, छुरे का इस्तेमाल, आज हम किसी भी विकल्प को छोड़ नहीं सकते। मैं पूरी सतर्कता बरतते हुए कह सकता हूँ कि हमें ध्यान रखना होगा कि रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल का खतरा हमेशा बना हुआ है।
फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुएल वॉल्ज के शब्द। प्रधानमंत्री वॉल्ज ने यह भी कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय देशों को अपने एयरलाइन यात्रियों की जानकारी आपस में साझा करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बेल्जियम पुलिस ने पेरिस हमलों के संदिग्ध हमलावरों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर छापे मारे हैं। यूरोपीय पुलिस संस्था के प्रमुख ने कहा है कि पेरिस हमले यूरोप में बढ़ते चरमपंथी खतरे को दिखाता है और आगे भी ऐसे हमले होने की संभावना है। यूरोपीय पुलिस संस्था या यूरोपोल के निदेशक रॉब वेनराइट ने कहा कि ये हमले बताते हैं कि चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट चरमपंथ को यूरोप में फैलाना चाहता है।
हम बहुत गंभीर संसाधनों से लैस और दृढ़ संकल्प वाले चरमपंथी संगठन का सामना कर रहे हैं जो यूरोप में सक्रिय है। इसलिए यह मानना सही होगा कि और हमलों की कोशिश की जाएगी और इस वजह से ये मान लेना चाहिए कि यह खतरा पिछले 10 सालों में यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
पिछले हफ्ते चरमपंथी हमलों के बाद फ्रांस ने सीरिया में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। फ्रांस और रूस एक साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने एक संगठित प्रस्ताव पेश करेंगे जिसमें चरमपंथी संगठन को हराने की योजना होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए प्रस्ताव पारित करने की मांग की है।
रिपोर्ट सुना रहे थे वैभव श्रीवास्तव। अगले कार्यक्रम घटनाचक्र में हम आपको सुनवाएंगे फ्रांस में रहने वाले भारतीयों की आवाज़ें और ये भी कि पेरिस हमलों के बाद वो क्या सोच रहे हैं, उन पर क्या कुछ बीत रही है। लेकिन पहले सीधे रुख कर रहे हैं भारत का, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। जिन जिलों में सूखे का सबसे ज़्यादा प्रकोप है उनमें राज्य के मध्य पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल हैं। ये वो सभी इलाके हैं जहाँ औसत बारिश कम रही है और किसानों को घर तक चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में सूखाग्रस्त इलाकों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और ये वो इलाके हैं जहां बारिश की कमी का औसत 60% या उससे अधिक होता है। आमतौर से ये वो मौसम भी नहीं है जब भारत के इस इलाके में सूखे का प्रकोप इस कदर बढ़ता जाए। सुल्तानपुर से सटे अमेठी के एक किसान प्रमोद श्रीवास्तव भी इस मुश्किल को झेल रहे हैं और उन्होंने इसकी वजह भी बताई।
अब की मानसून बहुत लेट से आया है। जो मानसून जून में आ जाना चाहिए था वो जुलाई में आया। किसी तरह से किसानों ने ट्यूबवेल से या जो निजी बोरिंगें होती हैं उससे डीजल इंजन से अपने खेत सींचे, उनमें धान की रोपाई की, लेकिन बाद में बरसात भी नहीं हुई, नहरों में पानी भी नहीं आया, तो फिर उनको फसल बचाने में बहुत ही दिक्कत आई।
लगभग आधा उत्तर प्रदेश इसकी चपेट में चल रहा है जिसके चलते न सिर्फ किसान खस्ता हाल हैं बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी अनिश्चित हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जिन जिन इलाकों में सूखे का प्रकोप है वहां से राजस्व जमा करने पर पाबंदी लगा दी गई है जिससे किसानों की आर्थिक मुश्किलें और न बढ़ें। लेकिन किसानों के पास विकल्प भी कम होते जा रहे हैं। गोंडा जिले के एक किसान अर्जुन सिंह भदौरिया को सुनिए।
इस समय के बाद पहले खेतों में नमी नहीं है तो उसके लिए खेतों को पलेवा किया जाना है। सूखे के चलते तालाबों में पानी नहीं है तो जमीन का जो जल स्तर है, भूगर्भ जल स्तर, वो भी नीचे चला गया, तो जो बोरिंग है उनमें भी पानी नहीं निकल रहा है।
भारत के मौसम विभाग के अनुसार जून और सितंबर के मानसून महीनों के दरमियान उत्तर प्रदेश में 53% के आसपास बारिश हुई है। इसमें से भी 16 जिले ऐसे रहे हैं जिनमें 40% से कम बारिश हुई है। अब आलम यह है कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सूखे से निपटने वाले सभी उपायों पर तुरंत काम शुरू कर दिया जाए, जिससे नुकसान को कम से कम रखा जा सके। हालांकि आगे आने वाले समय को लेकर भी कुछ किसान आश्वस्त नहीं लग रहे। सीतापुर के आशिक अली अंसारी ने बताया,
तो बहुत ही दयनीय दशा है हम लोगों की यहाँ सूखे की। और पहले जो रबी की फसल हुई थी उसमें जो है एक बाढ़ जैसी स्थिति एकदम आई थी, वो भयंकर तूफान, जिसमें बहुत नुकसान हो गया था, जिसमें हम लोगों का गेहूं जो था वो सब सड़ गया था, और उसका भी हम लोगों को कुछ मिला भी नहीं है। और इस बार ऐसा है कि मतलब गेहूं बोना मुश्किल है, इतना मतलब परेशानी।
उत्तर प्रदेश में आमतौर से मध्य प्रदेश से सटे बुंदेलखंड इलाके में सूखे का खास प्रकोप रहा है, लेकिन इस वर्ष इसका पैमाना बढ़ता हुआ तराई से सटे शाहजहांपुर इलाके तक पहुंच चुका है। निश्चित तौर पर इसमें तेजी से होते जलवायु परिवर्तन का भी बड़ा हाथ है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों को घाटी में दोबारा बसाने के लिए 2000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें कश्मीर घाटी में पंडितों को दोबारा बसाने के लिए उन्हें 3000 सरकारी नौकरियां देने की बात भी कही गई है। कश्मीरी पंडित इन प्रस्तावों के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने उनसे बात की।
हम लोग कोई बाढ़ पीड़ित या भूकंप पीड़ित नहीं है कि हमें कुछ घर मकान नौकरी या इस तरह की सहायता की आवश्यकता है। कश्मीर का विस्थापन वहाँ पर एक सोची समझी जाति संहार की नीति के चलते हुआ था, और आज भी वहाँ जो स्थिति है वो बेहतर नहीं हुई है बल्कि और बिगड़ी है। आग्रह होना चाहिए कि जो सैकड़ों हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, आगजनी हुई है, लूटपाट हुई है, उसके एक भी अपराधी को न उसकी सजा तय हुई है न उसका अपराध तय हुआ है। इसीलिए पिछले 26 सालों में इन टुकड़ों के फेंके जाने के बावजूद आज तक कोई नहीं लौटा है।
एक हमने पहले भी कहा था कि अगर एक अलग वो टाउनशिप बन जाएंगे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि हम तो वहाँ पर उनके साथ मुसलमानों के साथ नहीं हम रह सकेंगे। इसमें जो आज उन्होंने कहा कि जो इन्हें टाउनशिप के बारे में इसने कुछ नहीं मतलब इसमें जिक्र नहीं किया, तो इस पर सारे इस वक्त कश्मीरी पंडित जो है वो सारे इस वक्त वहाँ पर बिल्कुल गमजदा है और वो बिल्कुल इस पर महसूस करते हैं।
पैकेज पहले भी आज से 8 साल पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने भी पैकेज अनाउंस किया, तब 6000 नौकरियों का पैकेज और 1618 करोड़ रुपए का पैकेज था, जिसमें से मैक्सिमम जो जॉब्स हैं आज तक भरी नहीं गई हैं, लगभग 1600 लोगों को नौकरी लगाया है और 4400 नौकरियां अभी भी खाली हैं। अगर आप वहां जाएं कश्मीर में और जिन ट्रांजिट अकोमोडेशन में कश्मीरी पंडितों को रखा गया है वो ऑलमोस्ट एक कंसंट्रेशन कैंप जैसे हैं, वहाँ एक ही छोटे छोटे ये कश्मीर के लिए बने नहीं है क्योंकि ये प्री फैब्रिकेटेड सेट्स हैं, इनमें रहना बहुत मुश्किल है, कश्मीर में सर्दियों में इम्पॉसिबल हो जाता है, और ऐसे ठूस के रखा हुआ है जैसे भेड़ बकरियों को।
ये टेम्परेरी फेज है, ये लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर 3000 पहले आ गए आप 3000 और आएंगे, फिर उसके हिसाब से यहाँ की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो उसमें उसके ऊपर क्या असर होगा, जो पॉलिटिकल थॉट्स जो डिफरेंट थॉट्स के लोग हैं, जैसे कि सेपरेट लोग हैं वो हमेशा यही कहते हैं वो अपने घरों में आ जाएं, लेकिन लोग चाहते हैं जो कॉमन लोग हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर पंडित वापस आ जाएं। अब वो उन्होंने भी अब अंडरस्टैंड किया है कि वो अपने घरों में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एक तो उनके अपने मकान जो है वो बेचे हैं, और जहाँ गाँव स्पेशली इन विलेजेस वहाँ पे भी वो आइसोलेटेड जोन में नहीं रह पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी स्नैरो ऐसा वो नहीं है जो पहले 88 में था। अगर स्मार्ट सिटी है तो लेट द स्टेट और लेट द सेंटर बी द स्मॉल सिटी विद इन द वैली एंड रिहैबिलिटेट द कश्मीरी पॉइंट्स, अगर 50% उसमें कश्मीरी पॉइंट्स रिहैबिलिटेट होंगे तो 50% रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज उसमें रिहैबिलिटेट हो जाएगी। अगर ये एक्सक्लूसिव बन जाएगा फॉर द केपी कम्युनिटी, ये तो फिर गाजा टाइप स्ट्रिप बन जाएगा कश्मीर में।
ये थी कुछ कश्मीरी पंडितों की आवाज़ जो घाटी में उन्हें दोबारा बसाने की मोदी सरकार की योजना पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। और अब विश्व शौचालय दिवस के बहाने आज मिलिए प्रियंका भारती से, वही प्रियंका भारती जिन्होंने ससुराल में शौचालय नहीं होने की वजह से अपने पिया का घर छोड़ दिया था।
प्रियंका, आपने शौचालय को लेकर अपना एक तरह से ससुराल छोड़ दिया था, इतना तो सबको पता है, काफी नाम है आपका, अपनी कहानी अपने शब्दों में बताएं, क्या हुआ, किस तरह की दिक्कत हुई कि आपको ये कदम उठाना पड़ा?
हमारी शादी हुई तो हम अपने ससुराल आए, वहाँ पे शौचालय नहीं था, तो हमने अपने घर वाले से कहा कि आप लोग शौचालय बनवाइए, हम बाहर नहीं जाएंगे। तो हमारी सास और हमारे पति बोले कि हम लोग तो खेती में जाते हैं, तुम भी जाओ। तो हमको दिन में जैसे जाना पड़ता तो हम दिन में कहाँ जाएंगे, तो शाम का इंतज़ार करना पड़ता था। दुल्हन थी, दुल्हन दिन में जाएंगी नहीं बाहर, तो इसलिए हम एक कदम उठाएँ कि हमको शौचालय चाहिए, हम बाहर नहीं जाएंगे।
दिक्कत आपने बताई क्या होती है शौचालय नहीं होने से, तो आपने जब ये कदम उठाया कि आपने अब घर छोड़ के चली गई, तो किस तरह का असर उसके बाद जब आप वापस गई घर में अपने मायके चली गई, क्या असर हुआ आपके ऊपर, और फिर इस कदम के बाद गांव में समाज में क्या असर हुआ?
हमारे यहाँ तो लोग ताने दे रहे थे कि देखो अभी तो एक महीना हुआ है
मायके में,
हाँ शादी हुई अब भाग आई ससुराल छोड़कर शौचालय के लिए, कितनी खराब है कि माँ बाप का इज्जत भी नहीं रखी। तो हमारे माता पिता हम मतलब कहें कि देखो बेटी ऐसी काम नहीं की होती तो हम लोग को ताना नहीं सुनना पड़ता। हम भी बहुत दुखी थे कि देखिए, हम पापा से बोलने कि पापा देखिए शौचालय नहीं था, हमको दिन में जाना पड़ता तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए हमें कदम उठाएं।
तो किस तरह से फिर वापस आई आप और क्या असर देखा आपने गाँव में?
हम जब सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दो लोग हमारे घर गए और उन्होंने कहा कि प्रियंका चलो तुम्हारे घर हम शौचालय बनवाएंगे और स्नान घर भी बनवाएंगे। तब हम अपने मायके से ससुराल आए और हमारे यहाँ शौचालय और स्नान घर दोनों बना।
तो आसपास क्या असर हुआ?
आसपास तो बहुत असर हुआ, बदलाव बहुत आया। अरे देखो प्रियंका छोड़ दी शौचालय के लिए घर और इसको इनाम भी मिला और शौचालय भी बना और देखो काम भी कर रही है, सब लोग हमारा तारीफ करते हैं और नाम करते हैं और इज्जत से बात करते हैं।
अब तो आप टीवी पे भी आती हैं।
जी जी।
आसपास की जो गांव हैं, औरतें हैं, उन पे कैसा असर पड़ा क्योंकि आपने एक तरह से अब एक कदम उठाया?
तो हम घर घर जाकर मतलब समझाते हैं कि आप लोग अपने घर में साफ सफाई से रहिए, शौचालय बनवाइए, और वो हमारी बात मानते हैं, शौचालय बनवाते हैं और साफ सफाई से रहते हैं।
तो कितनी जागरूकता आई है लोगों में?
हमारे यहाँ तो बहुत जागरूकता आई है, ऐसे 10 गाँव हैं जो 10 गांव से ज़्यादा हमको जानते हैं लोग। हाँ प्रियंका, हमने जहाँ जहाँ जाते हैं सब हमको जानते हैं कि शौचालय के लिए, और बहुत परिवर्तन हुआ है पहले से, सब लोग शौचालय के लिए जागरूक हैं, कहते हैं प्रियंका जी आप बहुत अच्छी काम की और हम लोग को मतलब हमारी बेटी के साथ ऐसा ना हो, ससुराल छोड़कर अंदर जाएं, हम शौचालय के लिए मतलब जागरूक हैं, हम शौचालय होना ज़रूरी है।
और अब ताने भी नहीं मिलते।
अब ताने भी नहीं मिलते हैं।
ये थी प्रियंका भारती, उनसे बात कर रही थी BBC संवाददाता वंदना। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म स्पेक्ट्रा से चुंबन के दृश्य काटने के बाद विवाद शुरू हो गया है। सेंसर बोर्ड के सदस्य अशोक पंडित ने इसे सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी का मनमाना फैसला बताया है और इसकी कड़ी आलोचना की है। मुंबई में हमारे सहयोगी आयुष देश पांडे ने इस बारे में और जानकारी के लिए बात की अशोक पंडित से।
मेरी एज एन इंडिविजुअल, एज अ मेकर, एज अ बोर्ड मेंबर, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सेंसरशिप। बहुत बड़ा मजाक है इस पूरे इंस्टीट्यूशन का और ये बहुत गलत जगह जा रहे हो।
अशोक जी, क्या आपने बात करने की कोशिश करी कि मत करिए, या आपके साथ जो लोग थे क्या उन्होंने मना किया?
नहीं, ये क्या है, हम लोगों ने जिन लोगों ने इसके स्टाइल को अपोज किया है इसने उनको सबको दरकिनार कर दिया। हम लोग उनमें देखते ही नहीं, ये खुद ही डिसीजन लेता है, ये खुद ही अपना ये करता है सब कुछ जो उसको करना होता है। आज तक कभी किसी चेयरमैन ने सेंसर सर्टिफिकेट पर साइन नहीं किए, सारी चीजें वो खुद ही करता है, इसको तो जरूरत ही नहीं बाकी लोगों की। ये अभी भी पता चला है कि कसवर्ड जो हमने रिजेक्ट कर दिए थे, हमने वो पूरा उसका जो कॉल था उसको बोर्ड ने मेजोरिटी में उसको उठा के फेंक दिया, बोला कसवर्ड की लिस्ट नहीं होनी चाहिए। अगेन
अशोक जी, आप इतने सीनियर मेंबर हैं, आपने हमेशा बुलंदी से अपने जवाब और अपने थॉट्स रखे हैं, आपको नहीं लगता इतने सीनियर मेंबर होने के साथ साथ आप लोगों का ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है?
मेरे ट्वीट्स पढ़ो, मैं पिछले 15-20 मिनट मैंने 10 ट्वीट्स किए और मैंने अपनी देखा मेरे ट्विटर पे ट्वीट्स पे बाकायदा ओपन की बैंड बजाई है मेरे पहला जगह।
आपने बताया कि उनका आदत है ऐसा, ये स्टाइल है काम करने का, अपनी मर्जी से उन्होंने काट दिया ये सीन।
बिल्कुल, हम तो विद्रोह कर रहे हैं, ये रिडिकुल कर रहा है लोगों को, इसे मजाक बना के रखा है पूरे पूरे सेंसर बोर्ड के इंस्टीट्यूशन को।
अशोक जी, आप और आपके साथी क्या कुछ कदम उठाएंगे इसके साथ, मतलब क्या इसके खिलाफ कुछ
कदम? तो देखो क्या है, हम जब भी हमको लगता है हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, हम उसके अगेंस्ट बात करते हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट उसे टेकन एक्शन अगेंस्ट है ना, पूरी इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट खड़ी हुई, और ऐसे ही लोग जो है वो गलत नाम लाते हैं सरकार का, और इसमें कोई हैंड मिनिस्ट्री का ऑर्डर नहीं है, कोई गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है इसके डिसीजन में।
सेंसर बोर्ड के सदस्य अशोक पंडित से बात कर रहे थे आयुष देश पांडे।
बात इनके हकों की।
कुछ लोग हमें कहते हैं कि नकाब में रहो, कुछ लोग कहते हैं कि नकाब नहीं पहनना चाहिए, ये औरतों के ऊपर जाती है। हमारा कहना है हमें तय करने दो कि हमें क्या करना है।
कहानियाँ इनकी विविध चुनौतियों की।
हमारी जगह अगर लड़का होता, उनका बेटा होता, तो क्या वो नहीं करता क्या? मेरे लिए वो चैलेंज था कि मुझे ये करके दिखाना है, अगर लड़के कर सकते तो लड़के क्यों नहीं कर सकती।
मुझे ना कुशा नाम से बहुत चिढ़ाते थे, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मेरा नामकरण किया ना, तब मुझे निकिता नाम दिया गया है।
महिलाओं के नाम हमारी विशेष श्रृंखला
आधी आबादी
100 चेहरे
सोमवार 23 नवंबर से शाम 7:30 बजे PVC हिंदी के कार्यक्रम दिन भर में
और सुबह 8 बजे विश्व भारती में
100 महिलाओं से होगी मुलाकात bbchindi.com पर
और BBC हिंदी के YouTube चैनल पर भी।
आधी आबादी 100 चेहरे
दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। घड़ी में वक्त हुआ है 7:50 और अब वक्त हो चला है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय। दोस्तों नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ आज मैं हूं राजेश जोशी और मेरे साथ हैं
स्वाति बख्शी। और राजेश जी, जो पहली चिट्ठी मेरे हाथ में है, पोस्ट कार्ड है और उसका तापमान बहुत ही बड़ा हुआ है।
अरे बाप रे, तो बहुत ही अच्छी बात है, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है तो जितनी गर्मा गर्म चिट्ठियां सब पढ़ डाली है।
तोती राम पाखरे ने चिट्ठी लिखी है जिला अकोला से। कहते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया में तकनीकी रूप से सबसे घटिया और सबसे खराब वेबसाइट कौन सी है, तो मैं bbchindi.com का नाम लूंगा। मैं तकरीबन 1 साल से आपकी वेबसाइट से कार्यक्रम डाउनलोड कर रहा हूँ, हर बार कोई ना कोई तकनीकी खराबी आती है। पहले आप वेबसाइट को अपडेट नहीं करते थे, हमने पूछा तो आपने कहा तकनीकी खराबी है और हम माफी चाहते हैं। अब हम कार्यक्रम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह आप वेबसाइट का प्रचार करते हैं, उसी तरह तकनीकी रूप से वेबसाइट अच्छी रखना भी सीखिए। अगर आपके पास संसाधनों की कमी है तो वेबसाइट बंद कर दीजिए।
बहुत गुस्से में है पाखरे साहब, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इससे पता चलता है कि बीबीसी को कितना पसंद करते हैं, बीबीसी वेबसाइट को, बीबीसी रेडियो को। और मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ पाखरे साहब कि आपने इतनी कोशिश करके हमारे कार्यक्रम सुनने की बार बार कोशिश की, लेकिन जब आपको मुश्किल आई तो आपने अपना पूरा गुस्सा हम पे उतार दिया है जो हमारे सरमाथे। बस मैं आपके बहाने कहना ये चाहता हूँ अपने श्रोताओं से कि बहुत सारे श्रोताओं की हमारे पास चिट्ठियाँ, ईमेल और टेलीफोन आ रहे हैं कि डाउनलोड की जो सुविधा थी वो क्यों बंद कर दी है। इसका जवाब सिर्फ एक ही है, डाउनलोड की सुविधा किन्हीं तकनीकी कारणों से बंद की गई है। कॉपीराइट का कुछ मुद्दा था जिस वजह से डाउनलोड की सुविधा नहीं है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। डाउनलोड शायद उपलब्ध हो जाए पॉडकास्ट के जरिए, आपको कुछ नहीं करना होगा, वो तकनीकी एक प्रोसेस है, हम उस पर अभी काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कुछ खोखला भरोसा नहीं दिलाना चाहता हूं, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर पॉडकास्ट की सुविधा हमें मिल गई तो आप हमारे चारों कार्यक्रम डाउनलोड करके सुन सकते हैं।
अगला पत्र सलाहुद्दीन अहमद का है बॉम्बे से, यानी मुंबई से इन्होंने चिट्ठी लिखी है
जी।
लेकिन इन्होंने अपने चिट्ठी में बंबई लिखा है।
बंबई लिखा है, पुराने अंदाज के हैं बिल्कुल। क्या लिखते हैं?
कहते हैं कि आप जैसे सज्जनों ने बड़े पुराने हो चुके घर को न जाने क्या क्या जतन करके बचा रखा है।
चलिए,
जैसे घर कानपुर में दिखाई देते हैं, देखें कितने दिनों तक गिरने से बचा।
अरे बाप रे बाप, सलाहुद्दीन साहब आप हमारे साथ हैं तो घर को गिरने से बचाने का क्या मतलब, घर तो अभी रवां दवां होगा बिल्कुल, और आप हमारे साथ बने रहिए आगे।
अच्छा,
क्या
इन्होंने कहा है कि कृपया मेरी इस चिट्ठी को पूरा पढ़िए। कहते हैं कि आपने एक बार बिहार के झुमरी तलैया के एक श्रोता का पत्र 8 मिनट तक पढ़ा था, मेरा भी पढ़िए।
तब तो 1 घंटे का कार्यक्रम हुआ करता था और 8 मिनट की चिट्ठी पता नहीं आपको याद है, हो सकता है पढ़ी हो, लेकिन आपकी चिट्ठी का लबो लुआब तो आ गया है, तो हमें उम्मीद है कि आप आगे भी हमें इसी तरह प्यार भरी चिट्ठियाँ लिखते रहेंगे सलाहुद्दीन साहब।
कुछ ईमेल्स ले लेती हूँ राजेश जी। पिथौरागढ़ उत्तराखंड से शेखर सोन का ईमेल है, लिखते हैं कि वैसे तो बीबीसी हिंदी को बचपन से सुनता रहा हूँ, लेकिन पिछले 4-5 साल से नियमित रूप से नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन खुशी है कि बीबीसी को जिस प्रामाणिकता और सटीकता के लिए पसंद करता था वो आज भी उसी तरह बरकरार है। कहते हैं कि इनको फैला उजियारा कार्यक्रम बहुत ज्यादा पसंद है
जी। फैला उजियारा के बारे में बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं और मोहनलाल शर्मा का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम श्रोता अदा कर रहे हैं, और चिट्ठियां जल्दी से पढ़ दें क्योंकि हमारे पास अब समय थोड़ा
लेकिन
कम
इनका
है।
एक सुझाव था शेखर सोन का, कहते हैं कि सारे कार्यक्रमों को लाइव सुनने का विकल्प अपने मोबाइल ऐप पर भी देने का कष्ट
जी करें। बिल्कुल आप मोबाइल पे हमारी वेबसाइट पे सुन सकते हैं लाइव कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे और ऐप एंड्रॉइड अगर आपके पास है तो हमारा एंड्रॉइड ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए तो आप सुन पाएंगे।
विनोद कुमार सिंह ने नाइजीरिया से ईमेल लिखा है राजेश जी और कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार चुनाव के बाद बिहार के लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना गया। बिहार एक पिछड़ा राज्य जरूर है पर इतना नहीं कि उसका मजाक उड़ाया जाए और इतना भी नहीं कि वो अपने सम्मान की रक्षा ना कर सके।
देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिहार के मतदाता कह रहे हैं कि सम्मान की रक्षा उन्होंने की है अपना जनतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करके और वहाँ जो फैसला सुनाना था वो सुनाया है। नाइजीरिया से हमारे ये श्रोता बहुत पुराने श्रोता हैं अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करते रहते हैं लेकिन अब स्वाति एक घड़ी बता रही है हमें अब श्रोताओं से विदा लेनी चाहिए क्योंकि समय हुआ जा रहा है तो चलते चलते श्रोताओं को पता बता दें बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003 और अगर ईमेल भेजना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब कार्यक्रम के समापन से पहले खेल समाचार।
नमस्कार खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच बारिश की भेंट जरूर चढ़ गया लेकिन इस मैच ने शिखर धवन को उनकी फॉर्म जरूर लौटा दी। मोहाली टेस्ट की दोनों ही पारियों में खाता खोलने में असमर्थ रहने वाले शिखर धवन बेंगलुरु टेस्ट में 45 रन बनाकर नाबाद रहे। सिर्फ इतना ही नहीं धवन को उनकी फॉर्म के साथ ही कप्तान विराट कोहली का भी समर्थन मिल गया है। मोहाली टेस्ट में शिखर के खराब प्रदर्शन पर कोहली ने उनका बचाव करते हुए कहा
इफ यू कॉल स्कोरिंग 200s इन 3 टेस्ट मैचेस स्ट्रगलिंग देयर आई डोंट नो व्हाट इज इन फॉर्म बिकॉज़
अगर आप पिछले 3 टेस्ट मैच में 2 शतक को संघर्ष कहेंगे तो मैं नहीं जानता कि आप फॉर्म में होना किसे कहते हो। पिछले 3 टेस्ट मैच में धवन ने बांग्लादेश और फिर श्रीलंका के खिलाफ गाले में शतक जड़ा। दुर्भाग्य से वे चोटिल हो गए और उसके बाद उन्होंने मोहाली में अपना पहला मैच खेला इसलिए केवल 2 या 3 पारियों से इतना कड़ा रवैया अपनाना सही नहीं है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है हम उन्हें जितना आत्मविश्वास दे सकते हैं देना चाहिए।
और अब बात बॉक्सिंग की। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय महिला मुक्केबाज MC मैरीकॉम को अगले साल रियो ओलंपिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी AIB के टेस्ट इवेंट के लिए चुना गया है। वो इस इवेंट के लिए चुनी जाने वाली 6 सदस्यीय भारतीय दल में इकलौती महिला मुक्केबाज हैं। ये टेस्ट इवेंट ब्राजील में 4 से 6 दिसंबर तक होगा। 6 सदस्यीय भारतीय दल में मैरीकॉम के अलावा 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक मुक्केबाज मनोज कुमार विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनलिस्ट सतीश कुमार रोहित टोकस दिव्यांशु जायसवाल और प्रवीण कुमार शामिल हैं। और वहीं ATP वर्ल्ड टूर्स के सिंगल्स में आज रोजर फेडरर अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में सामना करेंगे जापान के केई निशिकोरी का जबकि सर्बिया के नोवाक जोकोविच भिड़ेंगे स्टैनलिस वावरिंका से। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद पैदा हुआ था। इस विवाद का जवाब दिया है राहुल गांधी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है कि अपनी 56 इंच की छाती निकालो और जांच करवाओ। ये क्या खबर है इसको खबर को आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर आकर विस्तार से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर एक और खबर आपको रोचक लगेगी कि अरब जगत में नास्तिक होने का क्या मतलब है क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि अरब मुल्कों में मुसलमान अपना धर्म छोड़ रहे हैं इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस खबर को भी विस्तार से पढ़ने के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर जहां पर खबरें लगातार बदल रही हैं और घड़ी की सुई इशारा कर रही हैं। एक बार फिर विश्व समाचार प्रगति सक्सेना से।
बीबीसी समाचार। फ्रांस के अधिकारियों के मुताबिक अब्दुल हमीद अबाउद नाम के जिस शख्स को वे पेरिस पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड मान रहे थे वह कल की गई पुलिस कार्रवाई में मारा गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि पेरिस हमलों से पश्चिमी देशों को यह समझ आ गया है कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ना राष्ट्रपति असद को हटाने से कहीं ज़्यादा अहम है। अमरीकी विदेश मंत्रालय और FBI ने चेतावनी दी है कि सेंट पीटर्स बासिलिका और इटली के अन्य महत्वपूर्ण स्थल चरमपंथियों के निशाने पर हो सकते हैं। इसके बाद वेटिकन में और उसके आसपास सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। रूस ने एथलेटिक्स में धोखाधड़ी के आरोपों के मद्देनज़र वादा किया है कि वह अपनी डोपिंग निरोधी संस्था में सुधार करेगा। डोपिंग निरोधी संस्था वाडा ने कहा है कि इसराइल अर्जेंटीना बोलीविया और यूक्रेन की डोपिंग निरोधी संस्थाएं भी नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। 14 देशों के लेखक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 3 दिवसीय साहित्य समारोह के लिए इकट्ठा हुए हैं। बेल्जियम में अधिकारियों ने आज भी कई जगहों पर छापे मारे हैं। इस कार्रवाई में उन लोगों को निशाना बनाया गया है जिन पर पेरिस में शुक्रवार को हुए हमले में शामिल होने का शक है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे हेमंत कुशवाहा। ठीक 1.5 घंटे के बाद घटना चक्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पल पल बदलती खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।